सात अध्याय दो श्लोक संख्या 22। नित्य आत्मा वय शुद्ध सर्वग सर्ववित् पर धत्ते अस्व आत्मनो लिंगम मायाया विसर्जम गुणान् नित्यात्मा वय शुद्ध सर्वग सर्ववित् परां धत्ते अस्व आत्मनो लिंगम मायाया विसर्जन गुणान् नित्य आत्मा वय शुद्ध सर्वग सर्ववित् परां धत्ते अस्व आत्मनो लिंगम मायाया विसर्जन गुणान् शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा नित्य शाश्वत आत्मा आत्मा अव्यय ना चूकने वाला शुद्ध भौतिक कल्मश से रहित सर्वग भौतिक या आध्यात्मिक जगतों में कहीं भी पाए जाने के योग्य सर्ववित्त ज्ञान से पूर्ण पर भौतिक दशाओं से परे धत्ते स्वीकार करता है असो वह आत्मा या जीव आत्मना अपना लिंगम शरीर मायाया भौतिक शक्ति के द्वारा विसर्जन उत्पन्न करते हुए गुणान विविध भौतिक गुणों को आत्मा या जीव की मृत्यु नहीं होती क्योंकि वह नित्य तथा अव्यय है। भौतिक कल्मश से मुक्त होने के कारण वह भौतिक या आध्यात्मिक जगतों में कहीं भी जा सकता है। वह भौतिक शरीर से पूरी तरह से अवगत होते हुए भी उससे सर्वथा भिन्न है, किंतु अपनी किंचित स्वतंत्रता के दुरुपयोग के कारण उसे भौतिक शक्ति द्वारा उत्पन्न सूक्ष्म तथा स्थूल शरीर धारण करने होते हैं। और इस तरह उसे तथाकथित भौतिक सुख तथा दुख सहने होते हैं। अतएव मनुष्य को शरीर में से आत्मा के निकलने पर शोक नहीं करना चाहिए। तात्पर्य पढ़ रहे हैं। हिरण्यकशिपु ने अत्यंत बुद्धिमानी से आत्मा की स्थिति का वर्णन किया है। आत्मा कभी भी शरीर नहीं होता, अपितु वह सदैव शरीर से पूर्णतया भिन्न होता है। नित्य तथा अव्यय होने के कारण आत्मा की मृत्यु नहीं होती, किंतु जब वही शुद्ध आत्मा मुक्त भाव से भौतिक जगत का भोग करना चाहता है तो उसे प्रकृति के प्रतिबंधों के अंतर्गत रख दिया जाता है, जिसके कारण उसे किसी ना किसी प्रकार शरीर धारण करना पड़ता है और उसके सुखों एवं दुखों को भोगना होता है। इसका वर्णन कृष्ण द्वारा भगवद गीता में भी हुआ है। कारणम गुण संगस्य सत असत योनि जन्मसु। जीव विभिन्न परिवारों में या जीवन की योनियों में उत्पन्न होता है, क्योंकि वह प्रकृति के गुणों द्वारा दूषित रहता है। प्रकृति द्वारा बद्ध होने पर जीव को एक प्रकार का शरीर धारण करना होता है, जो परमेश्वर के आदेशानुसार प्रकृति द्वारा प्रदत्त होता है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढानि मायाया। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक के हृदय में स्थित है और ये उन सारे जीवों के विचरण का निर्देश करते रहते हैं। जो भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र पर आरूढ़ होते हैं, यह शरीर एक यंत्र के तुल्य है और जीव को उसके कर्म के अनुसार प्रकृति के वशीभूत होकर इधर उधर विचरण करने के लिए विशेष प्रकार का यंत्र प्रदान किया जाता है। यह तब तक चलता रहता है जब तक वह परमेश्वर की शरण में नहीं जाता। माम एव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। बिना शरण में गए बद्ध जीव प्रकृति की व्यवस्था से एक जीवन से दूसरे जीवन में ले जाया जाता है। हरे कृष्णा। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इस गृहस्थ रुक्मणी कृष्ण प्रभु का और विमला प्रसाद प्रभु जी का, जिन्होंने मुझे फिर से अवसर दिया है मेरे शुद्धिकरण के लिए, आप सबके बीच में उपस्थित होकर इस भागवतम की वाणी को दोहराने के लिए। तो जैसे डिफेंस फोर्सेस में, स्पेशली नेवी में, अगर कोई शिप किसी स्थान पे फंस जाता है समुद्र में, तो एक SOS भेजते हैं वो लोग अपने हेडक्वार्टर्स में कुछ सहायता की अपेक्षा के लिए, कुछ हेल्प मिले उन्हें वहां से निकलने के लिए, जो कि एब्रीवेटेड फॉर्म है सेव आवर सोल। ना तो भेजने वाले समझते हैं इसका मतलब, ना रिसीव करने वाले समझते हैं कि किसको बचाने जा रहे हैं वो। तो इसलिए प्रभुपाद जी अनेक स्थानों पे कहते हैं द रियल वेलफेयर एक्टिविटी इज टू सेव आवर सोल। अपनी आत्मा को बचाना ये वास्तविक एक सहायता है और इसके बगैर, इसको जाने बगैर, इसको समझे बगैर जो भी हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं वो इस मनुष्य जीवन, जैसे प्रभुपाद इस तात्पर्य में मेंशन कर रहे हैं कि एक विशेष प्रकार का यंत्र जीवात्मा को दिया जाता है, तो हर यंत्र की एक उपयोगिता है, उसी प्रकार से इस मनुष्य जीवन रूपी यंत्र की भी कुछ उपयोगिता है। और प्रभुपाद कह रहे हैं कि जीव एक जीवन से दूसरे जीवन तक विचरण करता है, वो उसकी इस ब्रह्मांड में यात्रा चल रही है, भ्रमण कर रहा है वो एक जीवन से दूसरे जीवन की ओर। तो ये मनुष्य शरीर, मनुष्य देह भी एक यंत्र ही है, एक ऐसा यंत्र जो हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकता है। जैसे एक ब्रिज, अगर आप उस पर जाएं तो वो आपको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है, एक छोर से दूसरे छोर तक ले जाता है। वो ब्रिज बनाया गया है किस लिए? ताकि आप एक छोर से दूसरे छोर की ओर चले जाएं। तो ब्रिज बनाने का एक ये उद्देश्य है। अब कोई अगर ब्रिज पे चढ़े और ब्रिज पे चढ़ के सोचे कि ये ब्रिज कितना सुंदर है, यहां बड़ी अच्छी हवा आ रही है, यहां बड़ा रमणीय वातावरण है, मैं अपना घर यहीं बना लेता हूं, इस ब्रिज से नीचे नहीं उतरूंगा, इस ब्रिज पे ही अपने जीवन का वास बना लूंगा, तो वो उस ब्रिज को बनाने का उद्देश्य नहीं है। उसी प्रकार से ये मनुष्य का देह, प्रभुपाद कह रहे हैं कि एक यंत्र है विशेष प्रकार का, तो ये भी उसी ब्रिज के समान है जो हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकता है, और वो स्थान इस भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत तक ले जा सकता है। उस उद्देश्य से ये मनुष्य देह रूपी ब्रिज हमें प्रदान किया गया है। अब अगर कोई सोचे इस ब्रिज में आने के बाद कि मैं इसमें हमेशा रहने जा रहा हूं, इसी में वास करूंगा, इसे कभी त्यागूंगा नहीं, और इसी को सजाऊंगा, इसी को सुंदर बनाऊंगा, तो आज प्रत्येक मनुष्य इस जगत के अंदर हम देखते हैं यही काम कर रहा है। एक बात बता रहे थे कि यूरोप में आजकल लोग नेल पेंट की जगह नाखून में डायमंड्स लगाते हैं, एक नाखून 5 लाख का, हाथ 25 लाख का, चोर देखता ये तो निकलेगा नहीं, हाथ ही काट के ले जाता है। तो वो ब्रिज पे आने का वो उद्देश्य नहीं है कि उस ब्रिज को आप डेकोरेट करना शुरू कर दें, उसको और सुविधाजनक बनाना शुरू कर दें, उसमें और अपने लिए ऐसे आयोजन करना शुरू कर दें कि हम उस ब्रिज पे परमानेंट रहें। वो ब्रिज प्रदान किया गया है आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए। तो उसी प्रकार से ये मनुष्य का देह एक ब्रिज के समान जो हमें इस भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत ले जाने के लिए दिया गया है। अब उस ब्रिज में चलने का मतलब क्या है, उस ब्रिज में चलने का अभिप्राय क्या है, उसमें उसको पार करने का अभिप्राय है कि यह साधना भक्ति का मार्ग। तो हम इस मनुष्य देह में होते हुए अगर इस साधना भक्ति के मार्ग में लगते हैं, इस साधना भक्ति के मार्ग को अपनाते हैं, तो यानी कि इस ब्रिज पे रहते हुए हम क्या कर रहे हैं, उसका उपयोग कर रहे हैं जिसके लिए वो हमें दिया गया है। तो अगर कोई भी व्यक्ति इस मनुष्य देह को प्राप्त करने के बाद भगवान की भक्ति को स्वीकार नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब वो ब्रिज को एक सिरे से खड़े होकर देख रहा है बस, कि इसका आर्किटेक्चर कैसा है, इसमें कितनी अच्छी इंजीनियरिंग उपयोग की गई है, ये कितना सुंदर बनाया गया है, और भी अलग तरह की चीजें, वो सिर्फ उसी को निहार रहा है, उसकी क्वालिटी को देख रहा है, उसकी गुणवत्ता को देख रहा है, लेकिन उसकी उपयोगिता यानी कि उस पर चलना, वो भक्ति करना, वो उसको स्वीकार नहीं कर रहा है। तो ये जीवन एक यात्रा के समान बताया गया है हमारे लिए, कि ये जीवन एक यात्रा है, एक ऐसी यात्रा जो हमें प्रदान की गई है हमारी प्रत्येक प्रकार की यात्रा को समाप्त करने के लिए। तो अब यात्रा पे जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, तो हमें एक टिकट दिया जाता है, उस टिकट के ऊपर डेस्टिनेशन लिखा गया होता है कि कहां पर जाएगा, ये वैलिड है टिकट कहां तक, कौन से गंतव्य स्थान के लिए। तो उसी प्रकार से इस मनुष्य देह रूपी यात्रा का जो ये टिकट मिला है हमें, ये भी वैलिड है गोलोक वृंदावन धाम तक जाने के लिए। उस टिकट के ऊपर ये भी लिखा जाता है कि कहां कहां से होकर ये ट्रेन निकलेगी, किस किस स्टेशन पे हॉल्ट रहेगा, वाया कौन कौन सा रहेगा। तो उस प्रकार से आप जान लेते हैं कि जब आगरा आया तो हाँ समझ लेते हैं कि अब हम दिल्ली से दूर आ गए हैं, कानपुर आया तो समझ में आ जाता है कि हम दिल्ली से दूर आ गए हैं, तो आप अपने डेस्टिनेशन की ओर धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। तो एक प्रकार से वो आउटलाइन दे दी जाती है आपको, जिससे आप नाप सकते हैं कि अब इस यात्रा पे आप कितनी दूरी तक आ चुके हैं और कितनी दूर जाना है अपने गंतव्य स्थान के लिए। ये भी इससे नापा जा सकता है जब हम ये जानते हैं कि कहां तक हम पहुंच चुके हैं। तो ये साधना व्यक्ति उसी यात्रा के समानी है जिसके ऊपर हम चल रहे हैं। अब कोई भी यात्रा अगर हम अपने जीवन में करते हैं तो प्रत्येक प्रकार की गई यात्रा वो सुविधाजनक कभी भी नहीं होती है, चाहे आप एयरक्राफ्ट में भी क्यों ना जाएं। जैसे ही आप एयरक्राफ्ट में बैठते हैं तो सीधा क्या बोलते हैं, सीट बेल्ट बांध लीजिए। तो इसका मतलब बहुत बड़ा खतरा है तभी बांधने को कहा जा रहा है। फिर डेमोन्स्ट्रेशन दिया जाता है कि अगर हवा का दबाव कम होगा तो ये ऑक्सीजन मास्क आ जाएगा नीचे, इस तरह से ऑक्सीजन लेना है आपको, और ये एग्जिट द्वार है, कभी आपातकालीन परिस्थिति में यहां से आपको कूदना है और कैसे अपनी सीट को पकड़ के कूदना है ताकि आप वाटर में फ्लोट कर सकें। तो चाहे वो एयरक्राफ्ट में जाना सुविधाजनक नजर आता हो, लेकिन वो भी असुविधाओं से भरा हुआ है, उसमें भी कोई सुविधा नजर नहीं आती। तो चाहे किसी भी प्रकार की यात्रा क्यों ना हो, चाहे फर्स्ट क्लास में यात्रा करें या थर्ड क्लास में यात्रा करें, किसी भी प्रकार के साधन से यात्रा करें, तो यात्रा का अर्थ है कि वो हमें कष्ट देगी ही देगी। यात्रा का मतलब है कि वो हमें असुविधा देगी ही देगी। आप ट्रेन में जाएं तो आप सोचें कि मैं इस स्लीपर पे नहीं सोऊंगा, मुझे अपना बेड चाहिए जिसमें मैं रोज सोता हूं। और बेड लेकर अगर आप यात्रा करें कि मैं इसको लेकर जाऊंगा अपने कंपार्टमेंट में और उसी स्लीपर पे ये बेड डाल दूंगा, उसी पे सोऊंगा, तो वो संभव नहीं है। वो सुविधा आप रेप्लिकेट नहीं कर सकते उस ट्रेन की सुविधाओं में। जो उस ट्रेन में सुविधा दी गई है रहने की, खाने की, वही सुविधा आपको उपयोग करनी होगी। आप सोचें जो ट्रेन में मेनू बनाया गया वो मुझे पसंद नहीं है, जो घर में बनाया जाता है वो मुझे चाहिए, तो वो नहीं मिलने वाला है वहां पे। तो वो यात्रा कष्टप्रद है, उसमें शारीरिक भी कष्ट है, मानसिक भी कष्ट है, और अनेक प्रकार के कलेश भी उस यात्रा में दिए गए हैं। तो उसी प्रकार से जब हम यात्रा करते हैं तब हमें अनेक प्रकार की शारीरिक, मानसिक, अनेक प्रकार की असुविधाओं का, कष्टों का सामना करना पड़ता है। तो जब हम इस साधना भक्ति की यात्रा में हैं तो यहां पर भी हमें कष्टों का सामना करना पड़ता है। तो इस साधना भक्ति की यात्रा में भी जब हम चलते हैं इस ट्रेन में बैठ के इस कृष्ण भावनामृत की, तो अनेक प्रकार के कष्टों को, अनेक प्रकार की कठिनाइयों को हमें अपने जीवन के अंदर अनुभव करना होता है, उसका सामना करना होता है। प्रभुपाद कहते हैं कि भक्त जो है भगवान के, वो आई प्रत्येक परिस्थिति को कृपा के रूप में भगवान की देखते हैं, लेकिन हम कृपा की परिभाषा देते हैं जो हम चाहते हैं, कि हमारे लिए भगवान की कृपा वो है जो हम चाहते हैं, वो है भगवान की कृपा। तो अगर हम अपने आप को भक्त कहते हैं तो भक्त कहने के लिए हमें निश्चित रूप से उस परीक्षा को पास करना ही होगा। जैसे लोग हम देखते हैं कि बच्चे स्पेशली कोई ना कोई हॉबी रखते हैं, और जब उनके एग्जाम डेज आते हैं तो वो अपनी हॉबी को छोड़ देते हैं और उस समय पूरी तरह से फोकस करते हैं अपने एग्जामिनेशंस के ऊपर, और जब एग्जाम खत्म हो जाता है तो फिर हॉबी को एक्सेप्ट कर लेते हैं, फिर से हॉबी में लग जाते हैं अपनी। तो अधिकतर साधक ऐसा देखा जाता है भक्ति को एक हॉबी बना के रखते हैं, कि जिस समय वो कोई विपदा आ जाती है, कोई कष्ट आ जाता है, तो हॉबी छोड़ दिया, अब उस हॉबी को नहीं एक्सेप्ट करते। तो मतलब जब एग्जाम आया, जीवन का परीक्षा आई, किसी प्रकार की बाधा, किसी प्रकार की विपदा, किसी प्रकार की कठिनाई के रूप में, तो फिर हम हॉबी त्याग देते हैं। जैसे वो एक क्लब की मेंबरशिप, तो कृष्णा क्लब की ये मेंबरशिप के रूप में इस कृष्ण भक्ति को अपना लिया जाता है। तो ऐसे हॉबी हम उसको उपयोग कर रहे हैं और उसको फिर त्याग रहे हैं, लेकिन अपनी भौतिक आसक्तियों से इतने आसक्त और उसी में इस जीवन को इतना पूर्णता केंद्रित कर लेते हैं कि प्राथमिकता कभी कृष्ण नहीं बन पाते, प्राथमिकता हमारा ये भौतिक जीवन ही बना रह जाता है। तो इसलिए प्रभुपाद कहते थे कि भक्त की पहचान कैसे करनी चाहिए, या अगर हमें अपने आप का अवलोकन करना है कि हम इस कृष्ण भक्ति में कितने परिपक्व हुए, कितनी इस यात्रा में, इस प्रवास में हम कृष्ण की ओर प्रगति हुए, ये ट्रेन वास्तव में बढ़ रही है कृष्ण की ओर, इस भौतिक जगत से कृष्ण के गोलोक वृंदावन की ओर, या नहीं बढ़ रही है, अगर ये अवलोकन करना है तो किस प्रकार से किया जाए। तो प्रभुपाद कहते हैं कि अगर एक वेश्या को जानना है तो उसे दिन में जाकर देखो कभी, तब उसकी असलियत नजर आती है, जब वो बिना श्रृंगार की होगी तब पता चलता है कि वो वास्तव में उसका रूप कैसा है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं उसी प्रकार से अगर आपको एक भक्त को जानना है तो आप उसे देखो जब उसके जीवन में कोई क्राइसिस आता है, तब उस भक्त की वास्तविक पहचान होती है। जब उसके जीवन में कोई कष्ट आता है, कोई समस्या आती है, तब पता चलता है कि वो वास्तव में कितना भक्ति में परिपक्व है। तो इसीलिए वो मैं बोर्ड पढ़ रहा था आवश्यक सूचना, तो बड़ा सुंदर लिखा है किसी ने कि भीतर से परमात्मा देख रहे हैं, बाहर से सीसीटीवी। तो प्रिटेंड जरूर हम कर सकते हैं भक्ति का, प्रिटेंशन जरूर हो सकता है, दिखावा जरूर हो सकता है, लेकिन वास्तव में कृष्ण ही जानते हैं हमें कि वो भीतर से बैठे देख रहे हैं कि कितने हम इसमें परिपक्व हुए हैं। जिस प्रकार से गोल्ड को गोल्ड बनाने के लिए उसे कई प्रकार से तपाया जाता है, फिल्टर किया जाता है, कई प्रकार के प्रोसेसेस से निकाला जाता है, तब वो मूल्यवान स्वर्ण बन पाता है जिसको हम चाहते हैं अपने जीवन में। जिस प्रकार से आज एक डायमंड को डायमंड के रूप में जब देखा जाता है वो क्रिस्टल क्लियर नजर आता है, लेकिन उस अवस्था तक पहुंचने के लिए उसे कई प्रकार के प्रोसेसेस से होकर गुजरना पड़ता है, जिसमें कई प्रकार के कष्ट भी दिए जाते हैं। उसे तपाया जाता है, उसे साफ किया जाता है, पॉलिश किया जाता है, ग्राइंड किया जाता है, तब जाके वो एक मूल्यवान डायमंड बन पाता है। तो उसी प्रकार से एक साधक के लिए एक भक्ति की इस कृष्ण भावनामृत में वो तभी क्वालिफाई होता है जब उसके जीवन में कोई विपदा आई और उसको वो कैसे डील कर रहा है, तब वो जाना जाएगा कि वास्तव में वो भक्त है। जिस प्रकार से एक डॉक्टर तब तक डॉक्टर नहीं कहलाया जा सकता जब तक वो एग्जामिनेशन फाइनल पास ना कर ले जो उसको डिग्री दिलवाएगा, उसी प्रकार से एक भक्त के लिए भी, एक साधक के लिए भी, वो तब तक नहीं होगा जब तक वो एग्जाम जो उसकी विपदाओं के रूप में जीवन में आता है, किसी प्रकार के कठिनाई के रूप में जीवन में आता है, जब तक वो उसको पास ना कर ले तब तक उसे भक्त नहीं कहा जा सकता। तो शास्त्र ऐसे अनेक उदाहरणों से भरे हुए देखे जाते हैं। जैसे हम देखते हैं बलि महाराज, बलि महाराज के जीवन में आप देखते हैं कि पूरे कैसे, कितने बड़े सम्राट, कितने धनी, कितनी शक्ति, कितना नाम, सब कुछ, और क्षण भर में उनका धन चला गया सारा, उनकी पोजीशन चली गई, उन्हें शर्मिंदा भी किया जा रहा है, यहां तक कि भगवान वमन देव उन्हें बांध रहे हैं, ब्रह्मा जी आगे प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान आप तो पत्ता देने से प्रसन्न हो जाते हैं, पुष्प देने से प्रसन्न हो जाते हैं, बलि ने आपको अपना सब कुछ दे दिया लेकिन फिर भी आप इसे बांध रहे हैं। तो वहां पर वमन देव कहते हैं कि मैं दिखाना चाहता हूं पूरे जगत को कि मैं देने वाला हूं और मैं ही लेने वाला हूं। तो आप देखेंगे कि पोजीशन त्यागना आसान है लेकिन अहंकार त्यागना आसान नहीं है। इस साधना भक्ति में हम सब त्याग कर आए हैं, बहुत कुछ त्याग कर आए हैं, तो वो आसान था, लेकिन ईगो त्यागना आसान नहीं है। रूप गोस्वामी फिनेंस मिनिस्टर थे नवाब हुसैन शाह के, उनके लिए उस पोजीशन को त्यागना कोई कठिन नहीं हुआ और साथ में कोई अहंकार भी नहीं था। तो ये गुण रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी में देखने में आता है कि पोजीशन ही नहीं, उन्होंने अपने अहंकार को भी कैसे त्यागा हुआ था चैतन्य महाप्रभु का आश्रय लेते हुए। कि जिस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दे रहे थे वो वैसा वैसा ही करते जा रहे थे। तो इसलिए स्थूल आसक्तियों को त्यागना सरल है लेकिन सूक्ष्म आसक्तियां जाते हुए बहुत समय लगाती हैं, क्योंकि ये अनर्थ निवृत्ति बहुत लंबा है, हर साधक के लिए उसका एक अपना इतिहास है। जो वो लेकर इस कृष्ण भावनामृत में आया है। तो इसीलिए ये अनर्थ निवृत्ति की अवस्था सबसे लंबी देखी गई है इस कृष्ण भावनामृत के अंदर। वो बलि महाराज अपना सब कुछ कृष्ण को प्रदान कर रहे हैं, पल भर में सब कुछ त्याग रहे हैं। तो कई बार ऐसा लोग प्रश्न करते हैं, कृष्ण को हरि कहते हैं, वो सब कुछ हर लेते हैं, क्या वो हमारा सब कुछ हर लेंगे? लेकिन कृष्ण हमारी परीक्षा हमारे स्तर के अनुसार ही लेते हैं। तो जितना हमारा शरणागति का स्तर होता है, टेस्ट भी उसी स्तर का दिया जाता है। एक 7th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट को 10th स्टैंडर्ड का एग्जाम कभी नहीं आएगा, उसको 7th स्टैंडर्ड का ही टेस्ट देते हैं। तो उसी प्रकार से एक साधक को जो परीक्षा भी मिलती है, वो उसी के भक्ति की परिपक्वता के स्तर के अनुसार ही दी जाती है, उससे अधिक नहीं। तो कृष्ण उन परीक्षाओं को देते क्यों है? क्योंकि कृष्ण चाहते हैं कि हम इस कृष्ण भावनामृत में गंभीर हो जाएं इन परीक्षाओं का सामना करके। और हम जब देखते हैं कि ये परीक्षा आई लेकिन मैं फेल हो गया इस परीक्षा का सामना करने में, मैं उस क्षण कृष्ण का स्मरण नहीं कर पाया, उस क्षण मैं कृष्ण का आश्रय नहीं ले पाया, मैं उस समय कृष्ण पे डिपेंड ना होकर अपनी इंटेलिजेंस पे डिपेंड हो रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए इससे बचने के लिए, मैं अपनी योग्यताओं पे डिपेंड हो रहा था। तो प्रभुपाद कहते हैं कि ब्रजवासियों के अंदर एक ही गुण देखा जाता है कि वो हर परिस्थिति में कृष्ण पे पूर्णता आश्रित थे। और ये वृंदावन चेतना है कि जहां पे हर परिस्थिति पे कंप्लीट डिपेंडेंस है कृष्ण के ऊपर। और यही कृष्ण भावनामृत का पूर्ण उद्देश्य है कि हम हर प्रकार से हर परिस्थिति में अपने जीवन के अंदर कृष्ण का पूर्ण आश्रय ले सकें। तो इसीलिए प्रभुपाद जी का यहां ये कहना कि एक साधक की पहचान होती है जब उसके जीवन में विपदा आती है। एक कुत्ता दूर से हाथी को देख के जरूर भौंकता है, लेकिन जब हाथी उसके पास आता है तब पता चलता है कुत्ते का कि कैसे वो भागता है वहां से। उसी तरह से बड़ा प्रवचन दिया जा सकता है, बड़ी बात बोली जा सकती है, लेकिन जब अपने जीवन में ये परिस्थितियां आती हैं तब पता चलता है कि ये कितना साक्षात्कार हुआ है। शास्त्रों को पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, वो बहुत आसान है, लेकिन उसके अनुसार जीवन जीना बहुत बड़ी बात। जिस प्रकार से प्रभुपाद जी के पास वृंदावन में एक उनके शिष्य एक भक्त को लेकर आए और कहते हैं, प्रभुपाद ये पूरी भगवद्गीता 45 मिनट में बोल लेते हैं। कृष्ण भी 45 मिनट में बोले थे, ये भी 45 मिनट बोल लेते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं, कैन यू लिव भागवत गीता फॉर 45 मिनट्स? यू कैन स्पीक बट कैन यू लिव दैट? कैन यू लिव भागवत गीता फॉर 5 मिनट्स? आप 5 मिनट के लिए भागवत गीता जी सकते हो? तो इसीलिए एक साधक की पहचान उसकी योग्यताओं से नहीं की जा सकती। एक साधक की पहचान उसने कृष्ण का कितना आश्रय लिया है इससे की जा सकती है। एक वैष्णव की पहचान इसी बात से है कि वो कितना कृष्ण का स्मरण कर पाता है। योग्यताएं रहेंगी या नहीं रहेंगी, ये शरीर के साथ अर्जित की गई प्रत्येक योग्यता चली जाएगी, लेकिन जो कृष्ण पे आश्रय हमने ग्रहण किया और जो कृष्ण का स्मरण किया है वो कभी नहीं जाएगा। हो सकता है इस साधना भक्ति में, इस इंस्टीट्यूशन में रहते हुए हमारी सेवाएं भी छीन ली जाएं, लेकिन कोई हमसे हरिनाम नहीं छीन सकता, कोई हमसे कृष्ण का स्मरण नहीं ले सकता। इसीलिए अंतकाल में कृष्ण स्मरण की बात करते हैं कि हो सकता है ऐसी परिस्थितियों की हम उनका नाम ले भी ना पाए, हो सकता है हम उनके बारे में सुनने के योग्य भी ना हो, लेकिन हम स्मरण जरूर कर पाएंगे प्रत्येक परिस्थिति में। तो इसलिए कृष्ण कहते हैं, जो स्मरण करेगा वो अंतकाल में मेरा मुझे प्राप्त कर पाएगा। तो इसीलिए इस साधना भक्ति के मार्ग में कठिनाइयां हैं, लेकिन ये कठिनाइयां उस यात्रा की कठिनाइयों के रूप में ही हैं। अब यात्रा में अगर कठिनाई आती है, ट्रेन में कोई कठिनाई आती है, तो आप ऐसा नहीं है कि उतर जाते मैं तो स्टेशन पे रहूंगा, एयर कंडीशन वेटिंग हॉल है, मैं क्यों ट्रेन में बैठूं, यहां पे मैं घूम सकता हूं, चल सकता हूं, फिर सकता हूं, यहां पे कितनी सारी सुविधा है, जैसा चाहूं वैसा कर सकता हूं, मुझे स्टेशन पे रहना है, मुझे ट्रेन में नहीं रहना, क्योंकि ट्रेन में बड़ी सारे कष्ट हैं। लेकिन वो स्टेशन का निर्माण किस लिए किया गया है? ताकि आप ट्रेन पकड़ सकें और ट्रेन में जा सकें, इसलिए वो स्टेशन बनाया गया है। तो इस भौतिक जगत रूपी स्टेशन को बनाया गया है ताकि हम कृष्ण भक्ति की ट्रेन में सवार होकर गोलोक वृंदावन जा सकें। अब यहां की सुविधाओं की, यहां की टेम्पटेशन से अगर हम इतने टेम्प्ट हो जाएं, इतने आकर्षित हो जाएं कि हम सोचे स्टेशन अच्छा है, ट्रेन छोड़ दो, ट्रेन का क्या करना है, फिर कभी देख लेंगे ट्रेन को, तो स्टेशन पे कितना आनंद है, यही जीवन व्यतीत कर देते हैं। प्रभुपाद जी के शिष्य कह रहे थे कि जैसे आप कभी जूस खरीदने जाएं तो जूस की बॉटल के ऊपर लिखा होता है कि कौन सा जूस है, आप सोचें कि नहीं ये मैन्युफैक्चरर नहीं जानता ये एप्पल है, मैं टेस्ट करके देखता हूं ये एक्चुअली एप्पल है या नहीं है, या ये पाइनएप्पल है या नहीं है, या मैंगो है या नहीं है, मैं टेस्ट करके चेक करता हूं, तो मैन्युफैक्चरर लेबल कर देता है कि उसके अंदर इंग्रेडिएंट क्या है। तो कृष्ण ने भी इस भौतिक जगत की बॉटल पे लेबल कर दिया है दुखालयम अशाश्वतम, तो उसको टेस्ट करके देखने की कोई आवश्यकता नहीं कि उसके इंग्रेडिएंट है ही जन्म मृत्यु जरा व्याधि, और उसमें कुछ प्राप्त नहीं किया जा सकता, उसका जूस यही निकलने वाला है ना। तो बाहर से देखने में करेले का जूस भी ग्रेप्स की तरह नजर आता है, तो आप सोचें करेले का जूस पीते हुए कि ये ग्रेप्स जूस है, तो लेकिन वो आस्वादन करेले का ही देने वाला है क्योंकि वो करेले का जूस है, वो उसी प्रकार से कड़वाहट ही देने वाला है। तो अगर हम इस स्टेशन की सुविधाओं से आसक्त होकर स्टेशन पर ही जीवन व्यतीत करना चाहते हो तो वो सुविधा कुछ समय के लिए सुविधा रहेगा, एक प्रकार से देखेंगे तो हमारी खुशी अपेक्षाओं से मिलती है, उस स्तर उस सुविधा को प्राप्त करने से नहीं मिलती। जब तक हम सोचते हैं मुझे ये मिल जाए तो वो अपेक्षा हमें खुशी दे रही है, लेकिन वो वस्तु और वो सुविधा खुशी नहीं दे रही, और इसीलिए वो अपेक्षाएं कभी पूर्ण होती नहीं और हम कभी खुश होते नहीं। तो ये भौतिक जगत का स्टेशन इसलिए बनाया गया है कि यहां पर आप ट्रेन पकड़ सकें, और ये श्रीमद् भागवतम की एक्सरे मशीन हमें दिखा देती है कि चाहे कोई मिस्टर यूनिवर्स हो और उसकी हड्डी टूट जाए तो बाहर से देखने में वो अच्छा लगेगा, लेकिन अंदर से हड्डी टूटी पड़ी है उसकी, लेकिन एक्सरे के द्वारा जाना जा सकता है कि अंदर क्या हालत है। उसी प्रकार से ये भौतिक जगत देखने में बड़ा अच्छा लगता हो, यही संपर्श जाप होगा दुख योनया एवते। तो कृष्ण कह रहे हैं कि जैसे ही आप इंद्रियों से आनंद पाने की कोशिश करेंगे दुख योनया, ये दुख में बदल जाएगा, आदि अंत वंत तु कौन्तेया न तेषु रमते बुधा। तो बुद्धिमान मनुष्य ऐसे आनंद के कारणों में भाग नहीं लेता जो अंततः आपको दुख देने जा रहे हैं। जैसे दीन बंधु प्रभु एक बार बता रहे थे कि जन्माष्टमी के बाद प्रसादम में कैरेट चॉकलेट केक सर्व हुआ और वो देखने में बड़ा टेम्पटिंग था, और जैसे ही उनकी प्लेट पे आया और साथ में दाल चावल सब चीजें आई, तो पहले कहते हैं मैंने केक उठा लिया, और जैसे ही केक मुंह में डाला तो मुझे लगा कुछ गड़बड़ है, उसमें चीनी नहीं थी उसमें नमक था, तो उन्हें लगा कि शायद मेरा टेस्ट खराब है, कल उपवास किया था फास्ट किया था, कुछ गड़बड़ है मेरे खाने में। उन्होंने दूसरी तरफ से दूसरी साइड से खाया, वहां से भी सॉल्टी था, वो तो लगा कुछ तो गड़बड़ है समझ नहीं आ रहा, वो दूसरों की ओर देखने लगे और दूसरे भी खा रहे थे, लगा शायद मुझ में ही गड़बड़ है ये तो खा रहे हैं। वो फिर नीचे से खाने लगे तो वहां से भी सॉल्टी, तो उन्होंने रख दिया, फिर दाल चावल ही खाने लगे, पर देखते रहे केक की ओर, कहते फिर दाल चावल छोड़ के मैंने फिर केक उठा लिया क्योंकि देखने में इतना आकर्षक था वो, और फिर से मैंने केक खाया, लेकिन फिर से वही टेस्ट उसका, वही आस्वादन। तो चाहे हम इस इचिंग सेंसेशन को किसी भी तरह से क्यों ना पूरा करें, आस्वादन वही है दुख योनया एवते। उस टेम्पटेशन को देखेंगे, उसको देख के, उस लुभावने प्रस्ताव को देख के ट्रेन को छोड़ देंगे, स्टेशन पे ही निवास बना लेंगे, तो वो स्टेशन रहने के लिए नहीं बनाया गया, वो यहां से जाने के लिए बनाया गया। तो चाहे यात्रा में असुविधा हो, एक यात्री कभी भी किसी भी परिस्थिति में उस ट्रेन को नहीं छोड़ता, क्योंकि वो जानता है कि मुझे अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचना है। तो जब हमारा गोल ही क्लियर नहीं है, उद्देश्य ही स्पष्ट नहीं है, तो फिर ऐसा होगा, कभी ट्रेन में बैठेंगे कभी उधर जाएंगे, अभी बैठेंगे कभी उधर जाएंगे, फिर सोचेंगे सही ट्रेन में बैठा हूं कि गलत में बैठा हूं, तो फिर ये विचार रह रहकर मन में आते ही रहेंगे। जैसे एक लड़का हिप्पी प्रभुपाद जी के पास आया आरंभिक दिनों में, और प्रभुपाद के पास आके कहता है आई एम मिजरेबल स्वामी जी, मैं बड़े कष्ट में हूं, तो प्रभुपाद ने कहा कोई आवश्यकता नहीं है इस कष्ट के जीवन में रहने के लिए, ज्वाइन अस, हमें ज्वाइन कर लो, हमारे साथ रहो। और प्रभुपाद अंदर के एक धोती ले आए, कहते ये लो ये पहन लो। तो वो डर गया बड़ा, कहते स्वामी जी आई एम नॉट रेडी फॉर दिस, मैं इसके लिए अभी तैयार नहीं हूं। चला गया बाहर मंदिर से, और बाहर जब गया तो जाते ही उसको कुछ गुंडों ने लूट लिया, उसका जो भी था उसके छीन लिया उससे। फिर आया प्रभुपाद के पास और प्रभुपाद ने उसे दीक्षा दी, उसका नाम रखा प्रभुपाद दास। तो हम आते हैं कृष्ण के आश्रय में, कृष्ण की शरण में, लेकिन ये माया कई प्रकार के लुभावने प्रस्ताव रखते हैं और कई बार हम फिर कृष्ण को छोड़ भी देते हैं। जैसे काल कृष्ण दास चैतन्य महाप्रभु को त्याग के चले गए, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने कभी नहीं त्यागा उन्हें। तो ये जगत कई प्रकार के आकर्षक प्रस्ताव देता है। एक बार और समय की बात है कि एक और अमेरिकन यूथ प्रभुपाद के प्रवचन में आता था और वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आता था। तो उसकी गर्लफ्रेंड आकर्षित नहीं थी कृष्ण भावनामृत से, लेकिन वो सीरियस हो रहा था डिवोशन में, और जैसे जैसे वो प्रभुपाद की वाणी को पढ़ रहा था, प्रभुपाद के प्रवचनों को सुन रहा था, और उसे लग रहा था कि मुझे ये आसक्ति छोड़ देनी चाहिए, लेकिन somehow वो उसका एक पुराना रिलेशनशिप था, वो उसे खुद त्याग नहीं पा रहा था। तो एक दिन लेक्चर में बैठा और प्रभुपाद बिल्कुल सामने बैठे और व्यासासन के सामने वो बैठा हुआ और प्रभुपाद कह रहे हैं दिस मटीरियल लाइफ इज मिजरेबल। वो सर हिला रहा जोर जोर से, यस इट इज। तो प्रभुपाद लेक्चर कंटिन्यू कर रहे हैं और वो पीछे बैठी उसकी गर्लफ्रेंड बिल्कुल पीछे बैठी और वो शोल्डर पे उसके हाथ लगाती, तो देख नहीं रहा, किसी भी प्रकार के से बाधित नहीं हो रहा, और वो सुन रहा है बहुत अटेंटिवली प्रभुपाद को, लेकिन वो बार बार शोल्डर पे हाथ लगाती और पीछे मुड़ के देखता उसकी गर्लफ्रेंड ही बैठी हुई है, और वो बार बार इशारा कर रही है बाहर आने के लिए कि इस लेक्चर से बाहर जाया जाए। तो प्रार्थना करता है कि हे कृष्ण कृपा करके मुझे इस आसक्ति से बाहर निकाल दो, टेक मी आउट ऑफ दिस एंटेंगलमेंट कृष्ण। तो थोड़ी देर के बाद कीर्तन शुरू होता है और सब नाचने शुरू कर देते हैं, और वो देखता है मुड़ के कि अब उसकी गर्लफ्रेंड चली गई उसे छोड़ के, और वो नाचने लगता है थैंक यू कृष्णा यू टुक मी आउट, तुमने मुझे बाहर निकाल दिया। और आज वो लड़का जाना जाता है परम पूज्य देवामृत स्वामी महाराज के नाम से। तो ये आकर्षण जरूर होंगे जीवन के अंदर, ये टेम्पटेशन जरूर आएंगी माया की हमारे, जो हमें इस ट्रेन से उतारना चाहती हैं, लेकिन फिर भी अगर हम दृढ़ता से बने रहें। तो प्रभुपाद कहते हैं कि एक साधक की दृढ़ता को देख के कृष्ण अपनी दृढ़ता दिखाते हैं उसे वापस ले जाने के लिए। तो एक साधक अपनी दृढ़ता से कृष्ण की दृढ़ता को आकर्षित करता है, तो वो अपनी दृढ़ता से कभी कृष्ण को प्राप्त नहीं कर पाएगा, लेकिन वो कृष्ण की दृढ़ता को जरूर आकर्षित कर सकता है। और जब कृष्ण आकर्षित हो जाते हैं तब वो वापस जा सकता है इस भौतिक जगत से। तो इसलिए प्रभुपाद कहते थे कि हमारी तपस्या कृष्ण भावनामृत में एकमात्र है कि जब ये माया प्रस्ताव अपना दे तो उस समय ना कह देना, हमारी सिर्फ यही ऑस्टेरिटी है। जैसे एक बार जादूरानी माता जी और जानवा माता जी दोनों एक साथ थे मंदिर में, और दोनों ने साड़ी पहना हुआ था, वैष्णव अटायर में थे, और उसी समय दो लड़कियां आती हैं और दोनों ने बड़े कम कपड़े पहने हुए थे, और दोनों आमने सामने और दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं और दोनों कॉन्ट्रास्ट, और चारों के चारों अमेरिकन बॉडी में, और उसी समय प्रभुपाद जी आ जाते हैं और प्रभुपाद भी दोनों को देखते हैं कि किस प्रकार से उनकी शिष्यां जानवा माता और जादूरानी माता जी और दूसरी तरफ वो दो अमेरिकन गर्ल्स किस प्रकार के कपड़ों में, और ये वैष्णवी किस प्रकार के कपड़ों के अंदर है। तो प्रभुपाद कहते हैं दोनों को देख के तुम दोनों तपस्या कर रहे हो, इनकी तपस्या, उन अमेरिकन गर्ल्स की तरफ कहते हैं, इनकी तपस्या अपनी सेंसेस के लिए है और तुम्हारी तपस्या कृष्ण के लिए है। तपो दिव्यम शुद्धे, ये तपस्या शुद्ध करती है कृष्ण के लिए जब की जाती है। तो इसीलिए अमरेंद्र प्रभु ने एक बार प्रभुपाद जी से पूछा था कि प्रभुपाद व्हाट इट मींस टू लव स्पिरिचुअल मास्टर। तो प्रभुपाद कहते हैं कि अगर हम गुरु के प्रति अपना प्रेम प्रदर्शित करना चाहते हैं तो जो हमने दीक्षा के समय में प्रण लिया है उसका आजीवन हम पालन करें, तो ये गुरु के प्रति प्रेम है. टू फॉलो द इनिशिएशन वॉज टिल लास्ट ब्रेथ इज द लव फॉर स्पिरिचुअल मास्टर. ये बहुत कठिन है, लगता आसान है. ये चार नियम देखने में आसान लगते हैं, 16 माला देखने में आसान लगती है, लेकिन जैसे जैसे इस साधना भक्ति की यात्रा बढ़ती है तब समझ में आता है कि ये आसान नहीं है 16 माला. क्योंकि माइंड को बार बार अगर कुछ करना पड़ रहा है तो वो उसके लिए इतना आसान नहीं रहता है, वो कठिन हो जाता है. तो इस यात्रा में भक्तों के संग में बने रहना आवश्यक है इस जीवन के उद्देश्य को सिद्ध करने के लिए, जो कि प्रभुपाद तात्पर्य में कह रहे हैं कि ये हमारे विचरण को एक यंत्र से दूसरे यंत्र में समाप्त करेगा. अन्यथा माया रह रहकर हमें आकर्षित करती है. हम स्कूल में थे तो एक एडवर्टीजमेंट आता था एक फेमस साड़ी ब्रांड का. उसमें एक लेडी आती थी और एक लड़का था, और वो लड़का आता था और देखता था कि वो लेडी एक बड़ी सुंदर साड़ी में है, और जैसे ही वो उसके पास पहुंचता था वो गायब हो जाती थी. और स्लोगन आता था कैच मी इफ यू कैन, और फिर थोड़ी देर में वो किसी और जगह प्रकट हो जाती थी दूसरी साड़ी में, और फिर वो उसके पीछे भागता था, और जैसे उसके पास जाता था वो गायब हो जाती थी, फिर आता स्लोगन कैच मी इफ यू कैन. तो इसी तरह से वो पूरे एडवर्टीजमेंट में ये दिखाया जाता था. तो ये माया भी ऐसी ही है, दिखाती है और जैसे ही पास जाते हो फिर कहती है कैच मी इफ यू कैन, और फिर हम भागते हैं उसके पीछे कैच मी इफ यू कैन करते हुए, और इस यात्रा को इस ट्रेन को त्याग देते हैं और वहां भी कुछ नहीं प्राप्त कर पाते. तो इसीलिए प्रभुपाद कहते थे कि इस जीवन की योजना को बनाना बड़ा आवश्यक है. जैसे प्रभुपाद एक एग्जांपल कोट करते हैं अपने प्रवचन में कि एक एक्स प्लानिंग कमिश्नर थे डॉक्टर मेघनाथ शाह, वो प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट सबमिट करने जा रहे थे मिनिस्ट्री में और कार में हार्ट अटैक हुआ और मर गए. प्रभुपाद कहते हैं ही मेड प्लान फॉर द इंडिया बट ही कुड नॉट प्लान हिज ओन डेथ. वो पूरे भारत के लिए प्लानिंग कर रहे लेकिन अपना अंतिम परीक्षा का प्लान नहीं बना पाए. तो इसीलिए कृष्ण भावना अमृत की ये जो यात्रा है ये हमें वो उद्देश्य दिलाने जा रही है जो किसी और यंत्र में नहीं मिलने जा रहा है, और ये हमारी सारी यात्राओं को समाप्त करने वाली है. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवतम पुराण की, श्री श्री राधा राधिका रमन की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, श्री श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की. निताय गौर प्रेमानंदे.